जो हमारा अनुराग है वही शब्द है, या जो आत्मा है उसमें हमारा अनुराग है, आत्मरुचि का नाम सम्यक दर्शन है। और जिस चीज में रुचि होती है उसका ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मरुचि का नाम जैसे सम्यक दर्शन है वैसे आत्मज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और जिसमें रुचि है और जिसका ज्ञान हुआ है उसी में लीन होना चाहिए। तो कहते हैं कि आत्मलीन का नाम सम्यक चरित्र। कितना आसान आचार्यों ने हमारे लिए उपदेश दिया है कि यदि आपकी अपने आत्मा में रुचि है तो मानिएगा कि मोक्ष की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। और जिसकी आत्मा में रुचि नहीं है, जिसकी अभी संसार के विषय भोगों में रुचि है, उसके लिए क्या करिएगा? अभी वो धर्म से बहुत दूर है, दोनों चीजें एक साथ नहीं सकती भैया। यथा यथा नरोचन के विषय सुलभा तथा तथा संवित्तो तत्त्वम उत्तमम्। जैसे जैसे हमारी विषयों के प्रति अभिरुचि कम होती जाती है वैसे वैसे आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ती चली जाती है। या ऐसा कहें कि जैसे जैसे आत्म तत्व की ओर रुचि बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे विषय और भोगों के प्रति रुचि घटती चली कसौती है। दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं ऐसा कभी नहीं, एक बढ़ेगी एक जरूर से घटेगी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंधेरा भी घटता जा रहा है। ठीक है सर, हम ऐसी श्रद्धा को मैं मान के चल रहा हूँ कि चरणान योग की परिभाषा के अनुसार हमने ऐसी श्रद्धा को तपा लिया है। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है। भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्व भले ही हमें ना आते हो पर हमें इतना विश्वास है कि जो भगवान ने कहा है सो सच्चा है। ऐसी श्रद्धा भी हमारी है, हमें अपने आत्मा की बात दृष्टि भी है। अब ये बात जरूरी है कि हमारे भीतर कर्मों का विशेष रूप से दर्शन भूमि का क्षय हुआ है, उपशम हुआ है या शिरोपशम हुआ है। आज के समय में शायद सम्यक दर्शन होना तो मुश्किल ही है क्योंकि केवली शुद्ध केवली का पादमूल भी नहीं है कि हम जिनके चरणों में बैठ करके अपने सम्यक दर्शन को इतना परफेक्ट कर लें कि फिर छूटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अभी तो हमें शिरोपशम सम्यक दर्शन अगर होता भी है तो दिन भर में तो पता नहीं कितनी बार होकर के और कितनी बार छूट भी जाता है। श्रद्धा पाना भी जितना कठिन है उसको बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। बहुत मुश्किल से जैसे कोई व्यक्ति अपना ही चेहरा देखने के लिए दर्पण खरीद ले तब तो उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि अगर वो दर्पण में वो चेहरा नहीं देखे तो और धूल भी नहीं हटाए तो इतनी धूल जम जाएगी कि दर्पण होते हुए भी अपना चेहरा उसमें दिखाई नहीं पड़े। और किसी दिन अगर थोड़ी सी भी असावधानी हो गई, किसी भी क्षण अगर हम चूक गए तो दर्पण नीचे गिरेगा और टूट जाएगा। ऐसा ही इतना ही प्राइमरी, इतना ही डेडिकेट सम्यक दर्शन है। श्रद्धा होते होते छूट जाती है, वातावरण इतना बढ़िया नहीं है कि वो हमारी श्रद्धा को बढ़ाए। चौथे काल में यही तो होता है, फुल फैसिलिटीज है, आपको थोड़ा भी मन गड़बड़ाया समोशन लगा हुआ, आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, कैसे नहीं होगा? आप देख क्या नहीं है कि कैसे होते हैं तीन लोग के नाथ और कैसा होता है सच्चे देव का स्वरूप और गुरु का स्वरूप और शास्त्र दिग्गज भी सुन के आ जाएंगे। श्रद्धा के बहुत मौके हैं, श्रद्धा के मजबूत रहने के भी, उत्पन्न होने के भी, वृद्धि के भी। लेकिन आज के समय में श्रद्धा की उत्पत्ति के कारण भी थोड़े हैं, साधन तो है पर उतना पुरुषार्थ नहीं करता जी। और पुरुषार्थ की कमी होने की वजह से श्रद्धा में वृद्धि भी नहीं होती। जिन चारित्रिक गुणों के द्वारा श्रद्धा में वृद्धि होती है वे चारित्रिक गुण भी हमारे पास नहीं है। कहते हैं सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली अगर कोई क्रिया है तो चरित्र गुरु और प्रवचन भक्ति है। चरित्र के गुरु की और प्रवचन की कभी सर्वार सिद्धि में पूछताछ स्वामी की पढ़ी है, 25 क्रियाएं पढ़ी है, उसमें से एक ही क्रिया सबसे श्रेष्ठ मानी गई सम्यक वर्धनी क्रिया, सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया कौन सी है? तो भक्ति है, सम्यक दर्शन को बढ़ाती है। प्रवचन भक्ति है, चैत्य भक्ति है और गुरु भक्ति है। इन सब के प्रति जो हमारा एक डीप डिवोशन है, एक जो हमारा इनके प्रति समर्पण का भाव, जैसे इन चीजों के प्रति समर्पित होते, संसार की चीजों के प्रति, अपनी दुकान के पीछे कितने समर्पित हैं अपन कि 8 बजे खुलने माने 8 बजे खुलने, अब उसमें कोई रद्द बदल नहीं होती, नहीं तो ग्राहकी खराब होती। कितना डिवोशन है, कितने हम समर्पित हैं वहां पर, और भी चीजों के प्रति समर्पित हैं, वैसा ही समर्पण वहां से, मैंने कहा था आपसे कि डायरेक्शन चेंज हो जाए अगर वही समर्पण, हम जानते हैं समर्पण क्या कहलाता है, लेकिन वो समर्पण जो सांसारिक है वो अगर पारमार्थिक हो जाए तो वही तो हमारे भीतर धर्म की शुरुआत कर देता है। ऐसी श्रद्धा हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना काम तो हमने कर लिया है, करणानी योग के अनुसार जितनी हमको होनी चाहिए थी श्रद्धा और ज्ञान उतना हो गया है, फिर हमें क्या करना चाहिए। वो होते हैं रापहरणे दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणों प्रति कर्तव्य साधु। हमारी सज्जनता इसमें है, साधु पुरुष तो वो है जो की मुंह का अंधकार हटते ही साथ जिनको दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दर्शन और ज्ञान की जिनको प्राप्ति हो गई है, वे राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया है कि राग द्वेष मेरी नियति नहीं है, ये मेरी अपनी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ये मालूम कैसे मालूम पड़ा, अभी तो हम पूरी जिंदगी राग द्वेष को ही अपना मानते रहते हैं, अपने पराये का भेद करते रहते हैं, कहते नहीं जिस दिन दृष्टि की निर्मलता हो जाती है और ज्ञान हो जाता है उस दिन अपने आप भीतर प्रतिभासित होता है कि राग द्वेष मेरे नहीं है, तो फिर इनको करने का मिथ्या भाव क्यों करते हैं, राग करके अपनी अनुकूल परिस्थितियां घटित होने पर अहंकार करूं और द्वेष करके अपने प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उनसे द्वेष करके मैं अपनी दीनता क्यों प्रकट करूं। अहंकार और दीनता दोनों ही स्थितियां मेरे संसार को बढ़ाने वाली हैं, ऐसा विचार करके सम्यक दृष्टि राग द्वेष की किसमें हानि हो गए ऐसा उपाय करें जिसमें राग द्वेष न बढ़े। हम सब काम करेंगे दुनिया के, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि उसे तो पुरुषार्थ करना है, धर्म पुरुषार्थ भी करना है, अर्थ पुरुषार्थ भी करना है, काम पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन सावधानी इतनी रखनी है, दृष्टि की निर्मलता जिसके भीतर आ गई उसको सावधानी ये रखना पड़ेगी कि ऐसी ही क्रियाएं करें जिससे कि राग द्वेष न। और आज अपन वर्तमान में देखते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि जिन क्रियाओं के माध्यम से राग द्वेष की कमी हो चाहिए थी उनके माध्यम से अपन राग द्वेष कर रहे हैं, छोटी छोटी सी चीजों को जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई हमारे जीवन से सरोकार नहीं, ऐसी चीजें और ऐसे साधन जो कि वितरागता के साधन थे, उन वितरागता के साधनों के मिल जाने पर भी हम राग द्वेष कर लेते हैं तो ये हमारी कितनी बड़ी कमी कहलाएगी। जिसको साधन नहीं मिले भैया, जिसके आंख नहीं है वो गड्ढे में गिरे तो उसको माफ कर देती हूँ, जिसकी आंख है और फिर भी वो गड्ढे में गिरे तो क्या कहेंगे, तो भैया देख के नहीं चलते, हम देख सकते थे और देख के नहीं चले। तो जो हमें एक बार दृष्टि मिल गई, हम देख सकते हैं वस्तु को उसकी वास्तविकता में देख सकते हैं और देख रहे हैं, तो फिर हम क्यों उस वस्तु को लेकर के और राग द्वेष में पड़े, ऐसा विचार सम्यक दृष्टि करता है। और उन राग द्वेष को रोकने के लिए चरणम प्रतिपद और उसका कोई मतलब नहीं है, उसको बाह्य क्रिया करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करें बाह्य क्रिया से बच करके ही राग द्वेष से बचा जा सकता है, इसलिए अपनी बाह्य प्रवृत्ति को सीमित करता है। पूरा मोक्ष मार्ग निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति की जहां जहां बात आई है वहां पर अनर्गल प्रवृत्ति छोड़ करके शुभ प्रवृत्ति करने की बात आई है, और परिभाषा भी यही बनाई है कि असुहादो विनिवृत्ति सुबह प्रवृत्ति या ज्ञान चारित्रम, अशुभ से बच करके शुभ में लगना इसी का नाम चारित्र है। व्यवहार में तो शुरू में शुरुआत हमें करना पड़ेगी, लेकिन पहुंचना कहाँ है, जो स्थितियां होती है जीवन में, एक स्थिति होती है जब हमारा पाप से बचना मुश्किल, जब हमें संकल्प करना पड़ता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, और एक वो पहुंची हुई स्थिति होती है चारित्र की जब पाप करना मुश्किल हो जाता है, एक स्थिति थी जबकि पाप से बचना मुश्किल लगता है, और एक स्थिति साधक की इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती कि उसके द्वारा पाप ही नहीं होता, उसके द्वारा पाप करना मुश्किल हो जाता है, वो स्थिति हमें प्राप्त करनी है। हमारा प्राप्तव्य तो वो है कि जब पाप हमारे द्वारा हो ही न सके, हम इतने आत्मलीन हो जाएं कि समस्त शुभ और अशुभ क्रियाओं से हम प्रपंच में पड़े ही ना, लेकिन क्या करें जब तक अपने आत्मा में लीनता नहीं होती है, उस आत्मलीनता रूप चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जो है अशुभ से बच करके शुभ की तरफ जाने का प्रयास, सारा उपदेश जो है इसी लिए दिया जाता है, जब जब भी शुभ खो उपाधेय बताया हो गए तो वहाँ पर ध्यान रखना कि शुभ की उपाधेय का तात्कालिक है, अपने शुद्ध की प्राप्ति के लिए शुभ को उपाधेय माना है, उसको सर्वथा हे नहीं माना, और अशुभ प्रवृत्ति को तो सर्वथा हे माना है, क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा तो जो थोड़ा बहुत सम्यक दर्शन की गुंजाइश थी वो भी खत्म हो गई, लेकिन शुभ प्रवृत्ति के द्वारा तो गुंजाइश फिर भी बनी रहेगी। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जहाँ भी शिक्षावृत्ति के लिए हमें बहुत अधिक फोर्स किया गया है कि ये करो और ये करो, वहाँ पर उनका इंटेंशन आपसे सारी क्रियाएं शुभ करवाने का नहीं है। वहाँ भगवान का इंटेंशन तो इन शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठाने का है, उन्हें व्यापक जाने का नहीं। जब हमने कर तो नहीं पूजा और हमने पढ़ो तो हतो भक्ता मत पढ़ो तो हमसे का चाहता हो हम का करें, ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए कि हम का करें वित्त तो कर रहे हैं। नहीं, ये इतने करने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो इसलिए कर रहे थे कि पंचेंद्रिय के विषयों से बच सको इसलिए, पर अभी तो करना बहुत बाकी, अभी तो अपने में दीनता होनी चाहिए, अभी तो पर पदार्थों से बचा करके जो है अशुभ से बचा के शुभ में लाए हैं, क्योंकि उस शुभ में आने पर कषायों की मंदता होने पर ही तत्व के प्रति रुचि होती, आत्मा के प्रति रुचि होती है और उसमें तल्लीनता आती। जो व्यक्ति अभी विषय भोगों में तल्लीन है उस व्यक्ति से कोई अपेक्षा रखी जा सकती कि वो आत्मलीनता बात तो कर सकता आत्मलीनता की, लेकिन उसकी लीनता तो विषय भोगों में है। जरा से विषय भोग में कमी हो जाती है तो सारी तल्लीनता भंग हो जाती है। ऐसा अपन को विचार करना चाहिए कि हम अगर विषय भोगों में तल्लीन है तो वहां से हमारा ध्यान हटे और कम से कम धर्म ध्यान में लगे। कहते विषयानुरागा अशुभ उपयोग, विषयों में अनुराग होना अशुभ उपयोग है, उससे बचो। धर्मानुरागा शुभ उपयोग, धर्मानुराग तो शुभ उपयोग है और वास्तव में तो हमें करना क्या है। कहते निरुपरागा शुद्ध उपयोग, हमें तो उस निरुपराग दशा को राग द्वेष निवृत्ति पूरी तरह से राग द्वेष से बचने के लिए और हमें उस शुद्ध उपयोग की स्थिति को पाना है, तब फिर हमारा फर्ज होता है कि अशुभ से बुद्धिपूर्वक अशुभ से बचें, शुभ को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करें और जैसे ही शुद्ध में जाएंगे तो फिर शुभ छोड़ना नहीं पड़ेगा, शुभ तो पीछे छूट जाए। जैसे कि नाव उस पार पहुंच जावे तो फिर कोई को कहना नहीं पड़ता कि ये छोड़ी हमने नाव और ये चले हम दूसरी तरफ, हम उधर जाओ उधर भी बात पीछे छूट जाए तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, इधर छोड़ दे हमें। एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो नीचे वाली सीढ़ी छोड़ने का विचार नहीं करते, ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचने का विचार करते हैं, नीचे की तो अधारी छूट जाने उसे छोड़ने की जरूरत नहीं। और अगर कोई कहे कि मैं तो नीचे की सीढ़ी छोड़ूंगा तो छोड़ो तो बिल्कुल नीचे आ जाओगे अगर ऊपर पांव में धरोगे। ऐसा ही है मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन, आचार्यों ने हमें हमारे ऊपर करुणा करके स्टेप बाई स्टेप एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी हमें चढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें उलझने जैसा कुछ भी नहीं है, अगर भीतर कहीं उलझन हो गए तो भैया उसको जो है सुलझा लो, ज्ञान की प्राप्ति तो उलझने के लिए नहीं है सुलझने के लिए है। गलती किससे नहीं होती, सबसे हो सकती, चूक हो सकती है, लेकिन जैसे ही अपनी चूक मालूम पड़ जाए तो अपने आप जो है बिना किसी दूसरे से कहे सुधार लेना चाहिए। अगर हमारे भीतर ऐसा लगता हो कि नहीं क्या होता है इससे भी शुभ क्रियाओं से भी क्या होता है, तो तुरंत अपने भीतर विचार करना कि ठीक है शुभ क्रियाओं से होता तो कुछ नहीं है, हमें कम से कम धर्म ध्यान में तो लगे हैं तो गुंजाइश है कि अपन शुद्ध को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा तुरंत विचार कर लेना कि शुभ क्रिया से इसलिए कह रहे हैं कि उसी में रचपस नहीं जाना है, तो उसी को धर्म मान लोगे, अगर उसी को सब कुछ मान लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कोई बच्चे को नर्सरी में बहुत अच्छा लगे कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही नर्सरी में, तो खाई पीने की तो बहुत ज्यादा है दिन भर, ड्यूटी की तो थोड़ी बहुत सिखाती का कोयम सिखा दे और फिर अपने बच्चे खेलते रहते हैं और खाओ। अब वो सोचे कि हम जिंदगी भर जा ही पढ़ते रहे तो क्या ठीक है उसका ऐसा विचार, लेकिन उसका ये विचार ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है तो छोड़ो तो नर्सरी में सामान कटवाओ घर जाए। कहते नहीं तो पास करने पर उसमें से पास हो करके फिर पहले दूसरे तीसरे में पहुंचोगे, एक 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 क्लास पास करना पड़ेगी, वहीं रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ना है पर उससे हटना भी नहीं। ऐसा जो है ये चरित्र जो हम अपन इस श्रावकाचार्य की चर्चा करेंगे, इसलिए भूमिका आवश्यक है कि अपन पूरा व्यवहार चरित्र का वर्णन करेंगे, लेकिन उस व्यवहार चरित्र के माध्यम से अपन को क्या करना है, अपनी आत्मलीनता रूप कषाय के अभाव रूप चरित्र को प्राप्त करना है। कषाय का जितना जितना अभाव होता जाता है उतना उतना चरित्र बढ़ता चला जाए। कषाय मतलब क्या, चरित्र मोहिनी, चरित्र मोहिनी जितना हटता चला जाए उतनी अपने जो है आत्मा की प्रगति अपने लिए प्राप्त होती चली जाती, वही हमारा प्राप्तव्य है। तो कषाय को बंद करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अपने आत्मा की प्राप्ति, और कषाय किन किन चीजों से होती है उनको छोड़ने का उद्देश्य क्या है ताकि कषाय मंद हो गए। तो ये बात अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि चीजें तो छोड़ गई और कषाय मंद नहीं गई तो भी ठीक नहीं, और कषाय मंद हो गई और आत्मा बनता नहीं गई। कषाय तो मंद बहुत लोगों की पागल वाला आदमी होगा तो उनको सोचते ही नहीं बैठते अपने बड़ी कषाय मंद है तो कहते आत्मा की उपलब्धि हो गई, नहीं
सजगता भी आवश्यक है। कषाय की मंदता बुद्धि पूर्वक सजगता पूर्वक होवे, आत्मा की तरफ ध्यान होवे तो कषाय की मंदता उपयोगी है और चीजों को छोड़ना तो उपयोगी है। जब कषाय की जितनी विरक्ति उतना त्याग, अगर विरक्ति के बिना त्याग होगा, आशक्ति पूर्वक त्याग अगर बाहर घटित होगा तो बाहर का वो त्याग दूसरे को कोई संदेश नहीं दे पाएगा और अपने जीवन का कोई उससे उद्धार नहीं होगा। आशक्ति पहले तो चीजें छोड़ने के पहले चीजों की आशक्ति भी छोड़ना आवश्यक। छोड़ देने के बाद तो छोड़ ही डॉ चाहिए भैया आशक्ति, जैसे तो होता है कि छोड़ने के पहले आशक्ति छूट जाओ तो चीजों का छोड़ना तो छोटी होती, हमें पकड़े कैसे को पकड़ छोड़ दी और क्या किया। तो जो चीज जो है हमने पकड़ रखी है, जिसके प्रति हमारी आशक्ति है, उसको कमती करना ताकि हमारा राग द्वेष कम हो। हमारा पूरा आचरण ग्रहण करने का सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि हमें आत्मबोध पावे, क्योंकि संसार के प्रपंच में जितना हम फंसेंगे उतने आत्मा से दूर होते चले। और हमने अब तय कर लिया, हमें दृष्ट दे दें कि ये चीजें जो है हमें कुछ काम के लिए, हमें तो जितना समय बचे आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए। एक व्यक्ति थे कटनी में, तो कहते थे 400 रुपये को धंधा कर रखते थे, बस 400 रुपये एक दिन में बने सामान 400 को बेच लो बेउ कमाओ ठीक है 20% लेना है सौ रुपये का नहीं, मैंने सामान 400 से बढ़ा दो बेचने दुकान में 400 रुपये 500 बता दो। अर्थ पुरुषार्थ भी कर रहा है, अगर समय दृष्टि से पुरुषार्थ करता है तो भी संतोष पूर्वक करता है, संसार के काम करता है काम पुरुषार्थ करता है तो भी संतोष पूर्वक करता है। इतना ही उसका आचरण है, इतना ही उसकी निर्मलता है परमाणु की। ऐसा अपन को विचार करना चाहिए कि हमें भी जो है हम रास्ता ये अपनाना है, क्योंकि आनंद उसी में है। अपने करके लोग आपको आता धाती करके देख लो बेटा हो तो करके देख लो उनके, अगर ये शांति से होते तो बच्चा पुण्य के भैया के लिए अपने को शांत हो जाए और आपका धरने में राहत होता है तो किसी को शांति नहीं मिलती है। तो वो व्यक्ति 400 को कमाते, एक बार एक व्यक्ति सिर उठा हो जाए जो हमें लगता सिर उठाओ है क्या कहते हैं उसको सिर उठाओ तो कहते हैं सिर उठाओ मतलब सिर से पैर तक पूरे अपने उसके लिए सारी और सब चीजें दिखते रहते सब पूरा सब सामान निकलवा लो और हिसाब दे लो 800 को भाव हो गया 400 को दे सका था आज करनी
तो
दुकान से दूसरी दुकान से हम तो 400 को दे सकते आज होगा आज आज उठाने लगी दुकानदार ने नहीं देखा लगता तो प्रामाणिक है चलो इसी से लेते हैं सर जैसे उसे 400 रुपया दे और आज उसने इनने उसको प्रणाम कर दिया उसी तरह श्रावक को प्रणाम कर दिया प्रणाम तो ग्राहक को पता चाहे कोई प्रणाम कर लिख अगर ऐसे भाव से प्रणाम किया था मैं ऐसे बहुत उपकार मान गए तो भाई हुआ क्या हमें भैया इसलिए प्रणाम करते कि आपका बहुत उपकार कि 5 मिनट में हमारे 400 रुपये काम हो गए अब तो जो है तालो चाबी सब हमारे पूरा स्वाध्याय का हम पर हम ध्यान करेंगे आपका बहुत उपकार है। और ध्यान की तो हम नहीं कह सकते हैं मैंने जो घरों तुम्हें सारा उसे कल आओ उसे फिर 400 को दे दें सुबह सारे उतारा उसे उसको 400 को दे दिया फिर ताला लगाया फिर अपने मंदिर से मेरे धर्म के धोबे मेरे जीवन में भरे ऐसा जिसका विधान है वो है आचरणवान व्यक्ति। और बाकी अपनी सांसारिक क्रियाओं में तो कोई कमी नहीं है और उसमें से जैसे तैसे करके 10-15 मिनट निकाल लो आधा घंटा निकाल लो थोड़ा सुन लो थोड़ा होना चाहिए और निश्चिंत होकर करते रहो आपको काम मिल सकता है। और आपको 24 घंटा 1 घंटा फ्री है चाहे वो करें काम हुआ है मंदिर हुआ है आपका प्रकार का करना ऐसा नहीं सोचना अकेले उतने देखो एक व्यक्ति एक कदम को रखे अपने घर की तरफ और 100 कदम रखे दूसरे के घर की तरफ वो अपने से कहा दूसरे के दूसरे हम अपने आत्मा की तरफ तो एक कदम रखते हैं और संसार की तरफ 100 कदम रखते हैं तो कहाँ रहेंगे संसार में रहेंगे। ऐसा छोटा सा विचार करके अपने को अपने आत्मा की तरफ के कदम बढ़ाना है जिससे हमें आत्मा की प्राप्ति हो। आत्मा की प्राप्ति मतलब राग द्वेष से रहित परिणति हो गई और कोई आत्मा की प्राप्ति का जो धनी थोड़ी है कि जो आत्मा है समय उठा ली हो जा हो गई प्राप्ति नहीं हमारे जो विकारी भाव हैं वे कितने कम हुए हैं और कितने हमारे भाव शुभ हुए हैं यही हमारे आत्मा की प्राप्ति है ये विचार है उसका। इसी तरह कहते कि श्रावक अगर लेवे तो 5 मिनट लेना चाहिए श्रावक के आज के समय में बहुत कठिन है वैसे औरतों की चर्चा करना और कौन और व्यक्ति भी करेंगे दिव्रत और देशभक्त लोग जो बोल रहे थे उनकी भी चर्चा अपन करेंगे, शिक्षा वृत्ति की भी चर्चा अपन स्कूल में करेंगे और आगे संलेखना कैसे करेंगे पूरी बात करेंगे, प्रतिमाओं की चर्चा भी करेंगे क्योंकि तीन प्रकार के शावक हैं, एक पाक्षिक शावक है, एक नैष्ठिक शावक और एक साधक शावक है। अपन किसमें है जो अपन को देख लेना, पाक्षिक शावक वो कहते हैं जो अपने धर्म का पक्ष लेवे, क्योंकि पक्ष का अर्थ क्या है, पांच पापों के त्याग का नाम पक्ष है, उसका दूसरा अर्थ करता अर्थात जो पांच पापों का त्याग करके एक देश अनुव्रतों को ग्रहण करता वो पाक्षिक शावक। एक परिभाषा तो ये भी है और दूसरा कहते कि अपने सत्य जो गुरु शास के प्रति श्रद्धा है जो अपना पक्ष है इतने में अपन पाक्षिक शावक हो गए, अभक्षगत भक्षण का त्याग कर दिया। लेकिन अभक्ष भक्षण का त्याग करने कर दिया बहुत कठिन है आज के समय में, और व्यक्ति पूरे अभक्ष पदार्थों का त्याग कर दे हमें हमें लगता कि बहुत आसान तो नहीं है, पूरे सुबह से शाम तक कोई अभक्ष पदार्थ पहनने ओढ़ने की चीजें छोड़ दो, बोलने के लिए भी ले लो पाएगा, पता नहीं कौन सी चीज में कौन सी चीज मर्यादा की नहीं है और मर्यादा से बाहर की हो गई तो सारा भक्ष होता है, रोटी हो चाहे दाल सब्जी हो गए मेरा रोटा की होगी सब रोटी वाला भक्ष हो गया की मर्यादा है, क्योंकि अभक्ष भक्षण का त्याग अकेला भी कर दे दे मोटे मोटे चलो भाई सब अभक्ष का त्याग कर दे दे तो भी पाक्षिक शावक है। अब अपन अपने को कसौटी को देखें कि तुम कितने कर पा रहे हो, भाई सब अभक्ष का त्याग की तो बात ही है ना, भाई समक्ष का त्याग करना तब जाकर के जो है थोड़े बहुत पाक्षिक शुरुआत की स्टेप है कि पाक्षिक शावक शावक कहलाने लायक हो गए, नहीं तो गृहस्थ तो है, सेवा संघ में शामिल होना चतुर्विध संघ में शामिल होना भी आज दुर्लभ है, मुनिहारी का शावक शावी का ये भगवान का बताया चतुर्विध संघ है उसमें से अपन आप जो बैठे हैं सब उसमें से शावक के उसमें अपन आते दर्जे में कि नहीं आते उसके लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा और अभक्ष का त्याग व्यसनों का त्याग सात व्यसन है उनका त्याग करना इतना मोटा मोटा हो जाए, जैसे तो संत भद्र स्वामी कहेंगे कि तीन मकार का त्याग और पांच अनुव्रतों का पालन करना ये आठ मूल गुण है शावकों के, लेकिन बच्चों की अगर ले लो तो पांच डंबर पनों का त्याग तीन मकार का त्याग कर दो, तीन मकार का त्याग करना ही आज मुश्किल हो गया, मध्य मधु वंश का त्याग करना मुश्किल हो गया, पता नहीं हमने तो अभी बेटे को कैडबरीज लेके दी है और उसमें लिखा हो बीफ जिले थे तो वो भी खा रहा है हम भी खा रहे हैं जबकि उसमें दो वंश पड़ा हुआ है, हमको सुधर ही नहीं है, हम तो उसको दस रुपए की फर्स्ट क्लास जो है चॉकलेट और कॉफी खरीद के देते क्योंकि हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी का लड़का है तो फिर वो बड़ी बड़ी चीज खाएंगे, ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये घास फूस खाने वाले लोग तो बहुत दाल रोटी खाने वाले तो कौन पूछता है, थोड़े बड़े वो तो गरीब आदमी खाता है, ऐसा हमारा बन गया है एटीट्यूड। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपकी बुराई कर रहा हूँ, नहीं लेकिन
Thank you. विद्यासागर मुनि महाराज
तीर्थ संकरों के पंच कल्याणक मनाए व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली है कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कालुष मिट जाए। ऐसी गुरुवाणी जैसे समुद्र में दिव्य ध्वनि। ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमासागर जी महाराज के चरणों में सतत वंदन। आचार्य श्री के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी श्री अजित वीर श्री दिगंबर जैन पंचपार्वती मंदिर विद्यासागर नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एपी रोड इंदौर 10 दूरभाष कोड 0731 दूरभाष संख्या 2571851।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए। पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए। कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है गल आज सागर जैसा संत चाहिए।